इक्तदार के ऐवानों से लेकर जुल्म और जबर सहते इंसानों तक, तारीख के तारीख कोशों से लेकर दौरे हाजर के पोशीदा राजों तक, बैनुल अक्वामी साजिशों से लेकर मुल्क में इंतशार फैलाने वालों तक, अक्वामे आलम में तरक्की की दास्तानों से लेकर पाकिस्तानियों के सुनहरे कारनामों तक, इन सब का हाल जाने अब सिर्फ अलर्ट टीवी पर। अलर्ट टीवी के तमाम नाजरीन और हाजरीन जो इस वक्त मुझे यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे डिफरेंट पॉडकास्ट पर और इसके अलावा जो दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी अरसा लगा हमारे इस नए प्रोग्राम को आने में, क्योंकि इस दौरान मैं मुल्की व बैनुल अक्वामी हालात के ऊपर सोच विचार कर रहा था कि आखिर दुनिया इस वक्त किसी नई दिशा में, किसी नई सिमत की तरफ जा रही है। इस दौरान तुर्की और अमेरिका में इंतहा की कशीदगी देखने को मिली, जब शाम के अंदर तुर्की ने इंदिया दिया कि वो वहाँ पर बम्बार्टमेंट करेगा। इसके अलावा कश्मीर के हवाले से बहुत दिल दुखा देने वाली रिपोर्ट्स सामने आईं और ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत टेंशन की सूरत हाल सामने आ रही है। इस दौरान ईरान और सऊदीया की टेंशन बढ़ती हुई नज़र आई, जिसको कम करने में मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। पहली दफ़ा नज़र आया कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक लीडिंग पोजीशन पर खड़ा है, वो मुल्क के जिसके अंदर सिर्फ अमेरिका का एक छोटा सा सिफारतकार आके हमारे वज़ीर आज़म को मिलता था, वहाँ के सदर ने ख़ुद इमरान खान से रिक्वेस्ट की, जो कि इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, कि आप इनिशिएट लें ईरान के साथ हमारी कशीदगी कम करने में। और पाकिस्तान ने अज़ ख़ुद सऊदीया और ईरान की जो आपस में कशीदगी हो गई थी और अनकरीब था कि दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला कर दें, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट की कामयाबी है, हमारे लोगों की कामयाबी है कि इतने अरसे के बाद, शायद भुट्टो साहब के बाद, ज़ियाउल हक साहब के बाद, एक लीडिंग किरदार पाकिस्तान का आज हमें नज़र आ रहा है। बहुत से लोग इस वक्त मुझे इमरान खान का मोहरा समझेंगे, लेकिन जो बात हक है वो मैं बयान कर रहा हूँ। इसी दौरान कई दिनों से ये मामलात भी पाकिस्तान में गर्म हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक इंदिया दिया है कि वो एक आज़ादी मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत दिनों से मीडिया पर ये खबरें तो चल रही थी, मुख्तलिफ ज़राए से पता भी लग रहा था कि मौलाना साहब हकूमत से नाखुश हैं, मौजूदा हकूमत की पॉलिसियों से नाला हैं। इसके लिए मुख्तलिफ दीगर हिस्बे इख्तलाफ की जमातों से भी उनकी मीटिंग्स होती रहीं। लेकिन इन मीटिंग्स में कोई यूनाइटेड मस्बत पेशरफ्त ना होने की वजह से मौलाना साहब ने ये फैसला किया कि वो सोलो फ्लाइट लेंगे और उन्होंने आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया। जम्हूरियत में एहतजाज सबका हक होता है, जम्हूरियत इस मुल्क की बका है, जम्हूरियत लोगों की आवाज़ है, अगर वो हकीकी जम्हूरियत हो, जहाँ पर लोगों को उनके जायज़ हकूक دیے جائیں جمہوری طور پر. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جمہوریت ملک کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے. ایک طرف مولانا صاحب کا آزادی مارچ نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف مولانا صاحب کی تقریروں کو لے کر بھارتی میڈیا پاکستان کو نیچا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بارڈر کے اوپر بھی شدید ٹینشن بنتی جا رہی ہے. ان حالات کے اندر مولانا صاحب کا ایسے بیانات دینا کہ جو ہمارے لیے اس طرح ہیں کہ جس طرح پرانے زخم کو کرید دینا, میرے خیال میں اس موقع کے اوپر ایسے بیانات ایک سیزن پولیٹیشن سے کرنے کی توقع کم از کم مجھے نہیں تھی. جتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, ان جیسے سیاستدان سے مجھے امید نہیں تھی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جمہوریت جڑی ہوئی ہے ملک کی سالمیت سے. ایک طرف آپ کا ملک ہے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے انٹرنیشنل سازشوں کے باوجود, اور دوسری طرف اسی ملک کو جب سالمیت خطرے میں پڑ جائے کسی ملک کی, تو اس موقع پر ہمارا اقدام کیا ہونا چاہیے. یہ میرا تمام پاکستانیوں سے, میرے سننے والوں سے ایک سوال ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایک گھر ہوتا ہے اور اس گھر کے اندر چار یا پانچ بھائی ہیں جن کی سوچ اپنی ہے, جن کی فکر اپنی ہے, جن کے اپنے اجتماعی مفادات ہیں. ان بھائیوں کے درمیان جھگڑا بھی ہوتا ہے, ان بھائیوں کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے. وہ جھگڑا اختلاف کس لیے ہوتا ہے کہ یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں اس کو کس طرح چلایا جائے. وہ بھائی ہر دوسرے دن کسی نہ کسی معاملے پر آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, لیکن پھر آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک بھائی دوسرا بیچ میں پڑتا ہے, وہ ان کو سمجھاتا ہے تو معاملات سدھر جاتے ہیں. اس گھر میں ایک باپ ہوتا ہے, ایک ماں ہوتی ہے. اگر باپ اور ماں موجود نہ ہوں تو کوئی ایک ایسا سرپرست ضرور ہوتا ہے جو ان بھائیوں کو یکجا رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے, جو سب کی باتوں کو سنتا ہے. اور ماں اپنے بچوں کے اوپر ایسی شفقت کرتی ہے, باپ اپنے بچوں پر ایسی شفقت کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد کے اندر لاکھ اختلافات ہوں, لیکن وہ اس گھر کو بنانے کے اندر اپنا اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں. ان کے نظریات تو مختلف ہیں, لیکن گھر کو چلانے کے لیے ان سب کا یکجا ہونا ضروری ہے. تو بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی وہ قطع نظر کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے گھر کا سکون چاہیے ہوتا ہے. جب اسی گھر کو کہیں سے ایک ڈاکو آئے اور حملہ کر دے, اور بھائی بجائے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے گھر میں قبضہ کر لینے سے روکنے کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیں, تو یہ سوال ہے میرا تمام سننے والوں سے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی بالکل, یہی نتیجہ نکلے گا کہ بھائی تو آپس میں لڑ رہے ہوں گے, گھر کے مکین آپس میں لڑ رہے ہوں گے, تو باہر سے جو ڈاکو آئے گا وہ اس گھر کے اوپر قبضہ کر لے گا. پھر کسی بھائی کی نہیں چلنی, پھر وہ ڈاکو آئے گا گھر کے اوپر قبضہ کرے گا, اس کی املاک کو نقصان پہنچائے گا, اس کے اقتصادیات پر جو گھر کے اندر سامان ہوگا سب وہ لوٹ کر اس گھر میں قبضہ کر لے گا. اور قبضہ کر لینے کے بعد جتنے بھی گھر کے بھائی تھے, وہ مکین تھے, اس کی ماں تھی, اس کا باپ تھا, اس کا سرپرست تھا, ان سب کو گھر سے باہر نکال دے گا. تو پھر فائدہ کس کا ہوا؟ کسی ایک بھائی کا بھی نہیں ہوا, کیونکہ جس چیز کے لیے وہ لڑ رہے تھے وہ ان کی لڑائیوں کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے لڑائی تو کی لیکن اپنے گھر کی بقا کے لیے ایک نہ ہوئے. اگر وہ گھر کی بقا کے لیے وقتی طور پر اپنا लड़ाई झगड़ा छोड़कर उस घर की बका के लिए इकट्ठे हो जाते तो शायद वहाँ पर वो डाकू हमला ना कर सकता, वो डाकू वहाँ से मालो असबाब ना चुरा सकता, वो इन सब घर वालों को घर से बाहर ना निकाल देता। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ अपने भाइयों को कि पाकिस्तान हमारा घर है, इसकी सालमियत सबसे ज़्यादा पहले है, अव्वलीन तरजीह इसकी सालमियत है। मौलाना साहब आप बिल्कुल धरना दें, आपका आइनी हक है, आपका इंसानी हक है और हुकूमत का इखलाकी हक है कि वो आपको आज़ादी के इजहार राय दे, लेकिन ऐसी आज़ादी भी नहीं हो सकती जिससे घर की सालमियत को ख़तरे लग जाएं। आज़ादी होती है लेकिन वो इस घर के लिए है, जब घर के ऊपर हमले हो रहे हों तो भाई इख्तलाफात नहीं करते, वो पहले उस डाकू का इंतज़ाम करते हैं कि ताकि वो घर में ना घुसे। तो हुकूमत से भी मैं यही अपील करूँगा कि खुदारा अपने मसलों को घर में बैठकर सुलझाएं। इस मुल्क ने आगे जाना है, हमें और बड़े चैलेंजेस हैं, इन धरनों से इन लड़ाई झगड़ों से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। खबर आई है कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के प्रोग्राम में मैं देख रहा था आज 21 अक्टूबर 2019 को कि वो बता रहे थे कि 400 कंटेनर्स को इस्लामाबाद पुलिस ने इंतज़ाम कर लिया है, वो लेके मुख्तलिफ जगहों पर इन लोगों को रोकने का कि जो आज़ादी मार्च में दाखिल होंगे, और इसके लिए 15 करोड़ रुपए उनको दिए गए। इरादा 600 कंटेनर्स का था और इसका बजट उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने 25 करोड़ दिया था, लेकिन 15 करोड़ जारी कर दिए गए और 400 कंटेनर्स मौजूद हैं। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं सवाल करता हूँ उस मुक्तदर अदलिया से, काबिल एहतराम अदलिया से, मैं सवाल करता हूँ इस मुल्क के मुहाफिजों से कि आखिर हम कितना और इंतज़ार करें? धरने की डेट करीब आ रही है। इन सब सियासतदानों से भी सवाल करता हूँ कि कोई तो आगे आओ, सारे मिलकर इस घर को बचाएं, अपना अपना किरदार अदा करें, इस घर को बचाने में किरदार अदा करें। इस वक्त हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और ये सभी बेहतर जानते हैं कि कौन लोग हैं जो इस मुल्क की बका के लिए ख़तरा हैं, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में सुकून हो। तो अब इसकी सालमियत को किसने बचाना है? रियासत की सालमियत को किसने बचाना है? ये इकदामात आप लोगों को उठाने हैं, आप लोगों ने इसको प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे है। अवाम आपकी तरफ देख रही है, अवाम उम्मीद रखती है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लड़ रहे हैं महंगाई से, हम लड़ रहे हैं लाकानूनियत से, हम लड़ रहे हैं मेरिट की धज्जियाँ बखेरने से जो हमारा हक छीना जा रहा है। हम हर तरह के हालात बर्दाश्त कर रहे हैं, किस लिए? कि हमें पता है कि इस वक्त घर के हालात ठीक नहीं हैं, हम बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन जब हमें हमारे घर पर कब्ज़ा करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं और हम अपने घर में बैठ के लड़ रहे हैं बजाय के मुल्क की अपने घर की हिफाजत कर, खुदारा इसका कोई हल निकालिए, मुल्क को परेशानी से बचाइए, मुल्क को अनारकी से बचाइए। हम बहुत जुल्म देख चुके, हम बहुत इस्तेहसाल देख चुके, अब वक्त है। तमाम सियासतदानों से कहता हूँ, कौन सा ऐसा मसला है जो टेबल पर हल नहीं हो सकता? कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती? खुदारा कोई तो आए इस मुल्क की बका का ज़ामिन बनकर। शुक्रिया।